27 अप्रैल की उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी। सबसे पहले खास खास खबरें। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद देगा। ऑस्ट्रेलिया में अफरात जर की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। न्यू साउथ वेल्स के स्कूलों के टीचर्स का वॉकआउट और हड़ताल। और जामे कराची में खुदकश हमले में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जां बहक। ये तो हैं अब तक की खास खास खबरें। आइए अब खबरें सुनते हैं तफसील के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को दूर तक मार करने वाले मजीद हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। एक ऐसे वक्त जब रूस ने डोंबेक के इलाके में हमले किए हैं। ऑस्ट्रेलिया 26 मिलियन डॉलर के हाउटेजर्स नामी वसी रेंज के हथियार यूक्रेन को भेज रहा है। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन की मदद जारी रखेगा।
There's 6M777 155mm lightweight towed howitzers and howitzer ammunition, also incredibly important for what expected conflicts and battles coming up in Ukraine. That was a request that was made to us and we're only too pleased to support.
दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की सरहद से मिले हुए इलाके मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया खित्ते में होने वाले हालिया लगातार हमलों में रूस का हाथ है।
It's not just about fake news and the reason is clear. In order to destabilize the situation in the region, to threaten Moldova by showing that if Moldova supports Ukraine, then there will be these or those steps.
और अब ऑस्ट्रेलियन इंतखाबात। उमूर खारजा की वजीर ने खदशा जाहिर किया है कि चीन सोलोमन आइलैंड में अगले साल तक अपने फौजी तैनात कर सकता है। सोलोमन आइलैंड ने हाल ही में चीन के साथ मुतनाजा सिक्योरिटी मुहिदा किया है। ऑस्ट्रेलिया की वजीर दाखला कैरन एंड्रयूज ने 4BC से बात करते हुए ख्याल जाहिर किया कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया की लिबरल इत्तेहादी हुकूमत को इंतखाबात में नुकसान पहुँचाने के लिए खासतौर पर इस वक्त का इंतखाब किया है।
Why now? Why right in the middle of a federal election campaign is all this coming to light? I mean, we talk about political interference and that has many forms.
बरसर इख्तदार लिबरल हुक्मरान इत्तेहाद ने दावा किया है कि अगर लेबर पार्टी इख्तदार में आ गई तो वो कार्बन टैक्स लगा सकती है, मगर हिज़्ब इख्तलाफ का कहना है कि वो लिबरल रहनुमा टोनी एबिट की 2013 की कार्बन पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं, जिसे स्कॉट मॉरिसन की भी हिमायत हासिल है। इस पॉलिसी के तहत ज़्यादा कार्बन पैदा करने वाली सनअतों पर इमिशन कैप लगाया जा सकता है। वजीर आजम ने इसे गैर जाहिरी कार्बन टैक्स से ताबीर किया है, मगर लेबर के तर्जुमान जैसन क्लियर का कहना है कि लिबरल पार्टी हर हाल में तंकीद पर मुसिर है।
दिस इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी सेट अप बाय टोनी एबट, इंप्लीमेंटेड बाय स्कॉट मॉरिसन, सेम कंपनीज अंडर अस एज अंडर देम, मोस्ट ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड बाय द बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेरा have given us recommendations how to make it work better and we're going to do just that.
दूसरी तरफ वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने अपनी इत्तेहादी नेशनल पार्टी के सेनेटर के इस बयान की नफी की है, जिसमें नेशनल सेनेटर मैट कैनवन ने कार्बन की सिफर की सतह की पॉलिसी को मुर्दा पॉलिसी करार दिया था। वजीर आजम ने मैट कैनवन को गलत करार देते हुए इस तासुर की भी नफी की कि नेट जीरो इखराज पॉलिसी पर लिबरल इत्तेहाद तकसीम है।
Our candidate in Flynn was talking about is how we get there. He wasn't talking about the commitment himself, and he's clarified that today. Our commitment to net zero by 2050 is a commitment of the Australian government that I made in Glasgow. It is the government's absolute policy.
मार्च सहमाई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में अफरात जर की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 5.1% तक पहुंचने वाला इन्फ्लेशन एक दिहाई में सबसे ज्यादा इजाफा है, जिसके बायस रिजर्व बैंक शरह सूद में इजाफा कर सकता है। वजीर खजाना जॉर्ज फ्राइडनबर्ग का कहना है कि दीगर अवामिल के साथ साथ पेट्रोल की बढ़ती हुई आलमी कीमतें भी अफरात जर में रिकॉर्ड इजाफे का सबब है।
At a time of great international volatility is the impact of the war in Ukraine. What these numbers do not take into account of the full effect of is the halving of the fuel excise. And as I said at budget time, it's the expectation of Treasury that the halving of the fuel excise will take about 0.25% off inflation, and we'll expect to see that in the June quarter, not the March quarter numbers that we have just seen.
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पैरोटेट के स्कूल के दौरे से चंद लम्हे कबल मार्सडन हाई स्कूल के 40 असातज़ा ने क्लासों से वॉकआउट किया। असातज़ा का वॉकआउट उस वक्त हुआ है जब न्यू साउथ वेल्स की टीचर्स फेडरेशन ने किसी हुकूमती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्कूल आने पर वॉकआउट का इख्तियार दिया है। न्यू साउथ वेल्स के टीचर्स तनख्वाहों में 5.7% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं और इस सिलसिले में अगले बुध को हड़ताल की जाएगी। मिस्टर पैरोटेट ने असातज़ा के रवैये को गैर जिम्मेदार राना करार देते हुए कहा कि मुतालबात मनवाने के कई और भी तरीके हैं।
This is the Labour Party and the union movement playing politics with our kids and our parents. And I have made it clear, very clear, couldn't have made it clearer, that we're working through those issues with the unions right across the board. I've met with the Education Minister and the head of the Teachers Federation. We are going through those issues in a structured way. To have a result that is fair and reasonable.
और अब कुछ दीगर खबरें। दुनिया में मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाली एक अमरीकी इदारे USICRF ने अमरीकी इंतजामिया से सिफारिश की है कि वह हकूक़ के इंसानी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारत को गहरी तशवीश वाली ममालिक के ज़मरे में शामिल करें। याद रहे कि मजहबी आज़ादी के कमीशन ने इंडिया, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ 11 मुल्कों को गहरी तशवीश वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है और ये मुसलसल तीसरा साल है जब अमरीकी कांग्रेस के मुकर्रर करदा कमीशन ने इंडिया में हकूक़ इंसानी की सूरतहाल पर तंकीद की है और उसे तशवीश के जमरे में रखने की सिफारिश की है। लेकिन गुज़िश्ता 2 बरस से बाइडेन इंतजामिया ने इस कमीशन की सिफारिशात को मानने से इनकार किया है। कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर खुदकश धमाके के नतीजे में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जाँ बहक और दीगर 4 जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर के माहिरीन का कहना है कि यह हमला चीन के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की कड़ी मालूम होता है जिसकी जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये ग्रुप पहले भी चीनी मफादात पर हमलों में मुलविस रहा है। पुलिस के जिले इंचार्ज राजा उमर ने सहाफियों को बताया कि मंगल को होने वाला धमाका खुदकश था और इसे एक खातून ने किया। ये पहली बार है कि इंतहा पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने खातून खुदकश हमला आवर का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बलावल भुट्टो जरदारी ने तस्दीक की है कि वो कल इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में बतौर वफाकी वजीर हलफ उठाएंगे। ख्याल किया जा रहा है कि उन्हें वजारत खारजा का कलमदान दिया जाएगा। बलावल भुट्टो का कहना था कि उन्हें PTI और उसके वजरा की जानिब से तहरीक के अदम एतमाद वापस लेकर हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की गई थी। अखबारी कॉन्फ्रेंस पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी मुल्क की सियासी तारीख में एक बड़ी कामयाबी है जिससे यह तरीक़ेकार वाज़े हो गया कि आईनी और कानूनी तरीके से किस तरह किसी हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सूबे पंजाब के नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शरीफ की हलफबरदारी के हवाले से पैदा होने वाले तनाजे पर फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब से कल तक खुद या किसी और नुमाइंदे को नामजद करके हलफ लेने की हिदायत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का आईनी हक है जो वक्त आने पर होगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को आर्मी चीफ और दीगर तैनाती का कोई हक नहीं क्योंकि बकौल उनके ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और उसने अगर ऐसी तैनाती की तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार होंगे। दूसरी तरफ मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून के प्लांटेड एजेंट हैं और हमें उन पर एतमाद नहीं, अब उनके ओहदे पर रहने का बकौल उनके कोई अखलाकी जवाब नहीं है। और अब करेंसी की शरह। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर है 133.75 पाकिस्तानी रुपए, 0.71 अमरीकी डॉलर और 55.0 भारतीय रुपए के। और अब मौसम। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में कल बरोज जुमेरात मौसम का हाल इस तरह रहेगा। एडिलेड के अलावा बाकी तमाम शहरों में बारिश का इम्कान है। सिडनी में दर्ज हरारत 17 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मेलबर्न में 15 और 23, कैनबरा में 11 और 19, ब्रिस्बेन में 18 और 27, होबार्ट में 14 और 21 डिग्री सेंटीग्रेड, एडिलेड में 17 और 27, पर्थ में 13 और 21 और डार्विन में दर्ज हरारत 25 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्के है। پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں درجہ حرارت 26 اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں 28 اور 36، لاہور میں 27 اور 41، پشاور میں 26 اور 40، کوئٹہ میں 17 اور 32 اور نئی دہلی میں درجہ حرارت 30 اور 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اور یہیں پر خبریں ختم ہوئیں۔